ओम शांति। फ्रांस का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट जब अपने देश से किसी दूसरे देश की ओर जा रहा था अपनी सेना को लेकर, एल्प्स नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत बीच में आता था और उसने किसी से पूछा कि एल्प्स के इस पर्वत को हमें पार करना है। तो उस ज्योतिषी ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हो ही नहीं सकता, आज तक इस पर्वत को इतिहास में कोई भी पैदल इस तरह से पार नहीं कर पाया है, और तुम तो बात कर रहे हो अपनी सेना को लेकर इसे पार करने की, नहीं हो सकता। माना तुम बहुत बड़े योद्धा हो, पर ये काम तो नहीं संभव। नेपोलियन के साथ उसके जो साथी थे, जो सिपाही, वो भी इस बात को सुन लेते हैं और तुरंत कहने लगते हैं कि हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहां से ही लौट चलते हैं। तब नेपोलियन उनसे कहता है, क्या आप में से किसी ने एल्प्स पर्वत देखा है? वो सब कहते हैं, नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो नेपोलियन कहता है, मेरे पास नक्शा है, इस नक्शे में दिया हुआ एल्प्स पर्वत कहाँ है, हम अभी चलते हैं और जैसे ही एल्प्स पर्वत आएगा आप वापस लौट जाना, तब तक मेरे साथ चलो, क्योंकि इस पर्वत पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, जान भी जा सकती है। मैं चढ़ जाऊंगा, आप लोग चले जाना। तो सारी सेना पहले तो मना करती है, बाद में जब वो ये प्रस्ताव रखता है तो वो मान जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। बीच में एक पर्वत आता है तो वो नक्शे में देखता है ये तो बहुत छोटा पर्वत है, अपनी सेना को बताता है कि ये तो दूसरा पर्वत है, एल्प्स पर्वत ये नहीं है, अभी आगे है। तो सेना आसानी से उसको पार करके आगे बढ़ती है और आगे एक दो छोटे छोटे पर्वत आते हैं, कुछ और पर्वत आते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा आता है। तब सेना कहती है कि क्या यही एल्प्स पर्वत तो नहीं है? तो वो फिर से निकालता है अपना नक्शा और देखता है, नहीं नहीं, अभी तो एल्प्स पर्वत बहुत आगे है, ये तो एल्प्स पर्वत बिल्कुल है ही नहीं, तो आपको तो तब लौट जाना है जब एल्प्स पर्वत आएगा, तब तक तो आपको चलते जाना है। तो उस पर्वत को भी वो पार कर जाते हैं और जब चलते जाते हैं और देखते हैं कि सामने कोई भी अब पर्वत नहीं आ रहा है, तो सेना कहती है, एल्प्स पर्वत का क्या हुआ? तो वो कहता है, वो जो गया ना पीछे, वही एल्प्स पर्वत था। मन जब ये मान लेता है कि पर्वत बहुत बड़ा है तो वही डर जाता है, चित्त में जब ये बात समा जाती है जो हमने मुरलियों से सुना या दूसरों से सुना कि ये बहुत कठिन चीज है, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन उसको स्वीकार कर लेता है और काम करना चालू कर देता है कि ये बहुत कठिन है, और फिर सारी कायनात मदद करती है उस बात को सत्य साबित करने के लिए कि ये वास्तव में कठिन है, जाना ही नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था। और जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे तो आगे बढ़ना है, चाहे दुश्मन कैसा भी हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही रुस्तम हो, महावीर हो, आज तक कोई भी नहीं बचा उसके सामने, फिर भी मेरी विजय निश्चित है। जब ये बात मान लेता है, the whole universe conspires, सारी कायनात षड्यंत्र करेगी इस संकल्प को साकार करने के लिए कि जीतना ही है, जो शायद कोई नहीं जीत पाया। इतिहास में ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं कि जिनको चिकित्सकों ने बता दिया तुम्हारी बीमारी कभी नहीं ठीक हो सकती, और उन्होंने संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इसको ठीक करके रहूंगा। चिकित्सकों ने बता दिया कि यह ऐसी बीमारी है कि जिसको आज तक हुई है वो नहीं बचा, परंतु ऐसे भी कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने शारीरिक पीड़ा दर्द को भी पार कर लिया संकल्प से। संकल्प में इतनी शक्ति है। सुबह हमने इस मार्ग में आने वाली परीक्षाओं की चिंतन किया। इस जीवन में हमारे कदम आगे आगे बढ़ते रहे और कैसे, उसकी कुछ बातें हम अभी देखेंगे। तुषे रहिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों के शीश तू, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। एक ब्रह्मा कुमारी जीवन के ऐसे 12 शक्तिशाली कदम, जिसमें से एक एक कदम हमें आगे बढ़ाने वाला है। अंग्रेजी शब्द है ब्रह्मा कुमारी, अपनी डायरी पर ऊपर कैपिटल अक्षरों में लिखना है, BRAHMAKUMARI। इस ब्रह्मा कुमारी शब्द में बहुत सारी धारणाएं छिपी हुई है, और सबसे पहली धारणा है बी से, अर्थात ब्रह्मचर्य। एक है ब्रह्मचर्य, एक है पवित्रता, एक है पावनता, एक है ब्रह्माचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द अर्थात ब्रह्म ही स्थिति में स्थित होना, अर्थात उस ब्रह्म में जब आत्मा है उस अवस्था में स्थित होना, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है पवित्रता। तीसरा एक अर्थ है काम विकार से संबंधित, काम जीत अर्थात ब्रह्मचर्य। दमन नहीं वासना का, मुक्ति। जितना इस तीव्र भाव को दबाया जाएगा उतना वो फिर प्रकट होगी। बाबा ने दमन का मार्ग नहीं सिखाया। संसार में 2 मार्ग है, एक भोग एक दमन। संसारी लोग भोग करते हैं और दुखी होते हैं, जो संसार को छोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं दमन करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं साधना से, शारीरिक यातना देकर। ये दोनों ही मार्ग उससे मुक्ति के मार्ग नहीं है, मुक्ति अर्थात दमन नहीं, सप्रेशन नहीं, मुक्ति अर्थात काम से छूटने का बाबा ने जो मार्ग बनाया बताया है वो है ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। उसको ऐसा समझ लिया है कि अब वो व्यर्थ हो गई है, अब कोई मानसिक उत्तेजना, दैहिक उत्तेजना नहीं, अंग अंग शीतल हो गया है। पहले विकार मन में आता है, मन से भी पहले कुछ उत्तेजक उसको प्राप्त होने चाहिए। ऐसे कुछ उत्तेजक है, सबसे पहला उत्तेजना जो है काम की, वो है विजुअल दृष्टि, यहां से वो प्रवेश करता है। दूसरी उत्तेजना ऑडिटरी सुनना, तीसरी उत्तेजना है टच, और चौथी उत्तेजना है कल्पना, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, सेंसुअल फैंटेसीज, वासनात्मक कामुक कल्पना। विश्व भर के योगी और तपस्वी ब्रह्मचर्य तो धारण कर लेते हैं, परंतु काम की तृप्ति कल्पना से करते हैं। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, ये चार चीजें हैं। यदि हम एक डायग्राम निकाले तो ये हमारा देह है, ये चार चीजें यहां हैं, आंख, कान, स्पर्श और कल्पना। इनमें से वो प्रवेश करके इस शरीर में आएगा। यहां ब्रेन है, आत्मा और मस्तिष्क। यहां स्टिमुलस आया, यहां से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स, नसें सारे शरीर में फैल रही है। उत्तेजना का संकल्प यहां, उत्तेजना नीचे जाएगी और सारी देह में हलचल उत्पन्न करेगी। इंद्रियां चलायमान होगी, और फिर इन इंद्रियों की एक्साइटमेंट में क्षणिक सुख है, उसको भोगने का प्रयत्न करेगी, परंतु समाज रिस्ट्रिक्शंस, ये बहुत सारी चीजें उसने सुनी है, ज्ञान काम महाशत्रु आदि मध्यांत दुख देता है, ऐसी बहुत सारी बातें सुनी है। इसके लिए कहीं ना कहीं वो दबी हुई रह जाती है। दमित वासना, सप्रेस्ड इमोशन, और व्यक्ति उससे मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके निकलने का समय कभी कभी है। एक क्रिश्चियन बहन हमारे पास आए थे जो कि नन थी, उसको इतनी सारी बीमारियां थी पर रिपोर्ट सारे नॉर्मल। वो कहती थी ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। बाहर की इतनी मोटी फाइल लेकर आई थी जिसमें उसने कई सारे मरीजों डॉक्टरों को देखा था, और एक साइकियाट्रिस्ट ने उसका डायग्नोसिस किया था, जो कि नन थी, 30 वर्ष से समर्पित चर्च में, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स, ये उसका डायग्नोसिस था। बचपन, युवा, कॉलेज, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, और फिर सडनली समर्पण, और फिर चर्च, प्रार्थना, स्क्रिप्चर, शास्त्र, प्रवचन, एक नवीन जीवन, आश्रम का जीवन, और वो जो वासना थी युवा अवस्था की वो वैसे ही रह गई है, और वो फिर बीच बीच में प्रकट होती है, और वो प्रकट नहीं कर सकते तो शरीर पर असर और शरीर में अलग अलग बीमारियां। इसके लिए जब जब इसका दमन हुआ है वो और अचानक आंधी की तरह आ जाएगी, आत्मा को गिरा देती है, और जितना प्रवाह उत्तेजना काम की है, क्रोध की नहीं, लोभ की नहीं, मोह की नहीं, बाप आए हैं केवल पतित से पावन बनाने, क्रोधी को अक्रोधी बनाने नहीं, लोभ से मुक्त करने के लिए नहीं, मुख्य कार्य एक ही है, पतित को पावन बनाने। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता है, क्रोधी को काला मुंह नहीं कहा जाता है, क्रोधी को पांचवी मंजिल से गिरना नहीं कहा जाता है, काम को कहा जाता है। सबसे पहली जो धारणा है वो है ब्रह्मचर्य। और व्यक्ति सूक्ष्म में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, जब एक बार वो जा रहा था तो उस वैशाली की नगरवधु आम्रपाली, जैसे विदेश में क्लियोपाट्रा है वैसे सबसे रूपवती भारत में अगर कोई तब हुआ होगा तो आम्रपाली थी, एक वेश्या। उसकी नजर उस पर पड़ती है, और अब तक उसने संसारी लोग देखे थे ऐसा तेजस्वी कुमार, क्योंकि वहां ब्रह्मचर्य का तेज था। एकदम वो आकर्षित होती है उसकी तरफ, और वो नीचे उतरती है, महात्मा बुद्ध का संग चल रहा है, बुद्ध आगे है पीछे हजारों भिक्षु है, और वो उस भिक्षु से कहती है क्या आप कुछ देर यहां रुकेंगे? वो कहता है हाँ। फिर वो कहती है अभी कुछ ही समय में बरसात का मौसम आने वाला है, और सन्यासियों का यह नियम होता है कि केवल बरसात के समय 3 मास एक जगह रुकते हैं, क्या आप मेरे भवन में रुकेंगे? वो कहता है क्यों नहीं, और बाकी सारे भिक्षु एकदम शॉक हो जाते हैं, ये इसने क्या कर दिया, ये तो गया, अब इसका पतन निश्चित है। परंतु वो शिष्य कहता है कि मैं रुकूंगा, परंतु मैं एक बार महात्मा बुद्ध से पूछ के आता हूं, और मुझे नहीं लगता वो ना कहेंगे। इससे पहले कि वो पहुंचे, बाकी भिक्षु उसके हितचिंतक जिनको ज्यादा चिंता है कि ये इसने क्या कर दिया, और मौका भी अच्छा है कंप्लेंट का, पहुंच गए बुद्ध के पास और बहुत सारी बातें सुना दी, उसके प्रेम में वो पागल हो गया है वगैरह वगैरह, बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें, और वो अब संग छोड़कर जा रहा है उसके पास, आम्रपाली के पास। बुद्ध कहता है शांत, वो आएगा मुझसे पूछने। वो भिक्षु आता है, वो कहता है कि मुझे आम्रपाली ने निमंत्रण दिया है, मैं जाऊं? बुद्ध उसको देखते हैं, कहते हैं जाओ। बाकी जो शिष्य थे और ज्यादा शॉक्ड, कहते हैं आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपने गुरु को बता रहे हैं मन ही मन, ये नियम को तोड़ रहा है। बुद्ध कहता है मुझे उस पर विश्वास है। 3 मास वो शिष्य, वो भिक्षु आम्रपाली के भवन में रहता है, बहुत विशाल भवन, क्योंकि वो बहुत श्रीमंत थी। 3 मास के बाद वो भिक्षु महात्मा बुद्ध के सामने आता है। बाकी लोग तो सोचते हैं ये तो गया, परंतु वो आता है और उसके पीछे आम्रपाली सन्यासी वेश में बुद्ध की सबसे महान शिष्यों में एक शिष्या एक भिक्षुनी आम्रपाली बनी। जहां व्यक्ति काम से मुक्त है वहां दमन नहीं, वहां भागना नहीं, वहां पलायन नहीं, वहां एस्केपिज्म नहीं, भगोड़ापन नहीं, परंतु वो उससे परे निकल गया है। उसे भागने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं किसी भी चीज से, क्योंकि अंदर यह भाव इतना प्रगाढ़ हो गया है कि यह देह मिट्टी है, इस देह से क्या। ऐसी वैराग्यवान अवस्था योगी की अवस्था है कि संसार के कितने भी प्रलोभन सामने हो उसके लिए व्यर्थ है और मिट्टी है। वैराग की सबसे बड़ी परिभाषा किसी ने दी है दो शब्दों में, वैराग अर्थात संसार असार और देह मिट्टी। सारा संसार इस देह के पीछे है, इस देह के सौंदर्य के पीछे। जब ये भाव इतना प्रगाढ़ हो जाए कि इस देह में कुछ भी नहीं ऐसा जो भोगने योग्य है, भोग भोग कर भोग भोग कर हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोगा है, और आत्मा बलहीन हो गई, और सबसे तेज गति से यदि आत्मा की शक्ति का नाश होता है तो वो लस्ट से है। टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन। व्यक्ति नीचे गिरता है, इसलिए काम से मुक्त होने के लिए काम को भी समझना पड़ेगा। शत्रु किस तरह से काम करता है, क्योंकि सबसे खतरनाक शत्रु है। ऐसा हम नहीं कह सकते हम तो विजयी है ही, क्योंकि बहुरूपिया है, अलग 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 रूप धारण करके आता है। पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक थे जैमिनि, भारत में छह शास्त्र है, छह दर्शन षड दर्शन, उसमें एक पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, दर्शन, ऐसे छह है टोटल योग। उनके जीवन में बताया है कि उन्होंने अपने गुरु व्यास से कहा कि एक दिन जब व्यास ने कहा कि सन्यासी अकेला नहीं रहना चाहिए, हमेशा संगठन में रहे योगियों के, जैमिनि कहता है मैं संपूर्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं, मुझे किसी के संघ की आवश्यकता नहीं, स्त्री और कोई भी व्यक्ति मुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते, मैं इतनी अपनी पवित्रता में स्थिर हूं, ये सब मुझे व्यर्थ लगता है, संसार के मोह बंधन भोग वासना, इसके लिए मैं अकेला ही रहूंगा। तो व्यास जी कहते हैं ठीक है देखते हैं। वो कहते हैं कल सुबह मैं 3 मास के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, तुम सब कुछ संभाल लेना। वो कहता है आप चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन जब जैमिनि अपनी कुटिया में तपस्या करते रहते हैं, रात्रि का समय है, अचानक उसे आवाज आती है किसी स्त्री के पैरों की घुंघरू की, बाहर बारिश हो रही है। वो देखता है यह स्त्री झाड़ के नीचे खड़ी है और भीग रही है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय पिघल जाता है, उसको रहम दया भाव जागृत होती है। वो कहता है माता आप वहां नहीं, यहां आ जाओ कुटिया के बाहर। तो वो वहां आती है, फिर ध्यान में बैठता है तो उसको ख्याल आता है ये तो पूरी भीग गई है, इसे कुछ देना चाहिए वस्त्र, तो उसे वो कंबल वगैरह देता है। फिर ध्यान में बैठता है, फिर उसके कुड़कुड़ाने की आवाज उसको आती है, सोचता है मैं भी कैसा हूं, उसको अंदर रखना चाहिए, मैं तो पुरुष हूं मुझे बाहर रुकना चाहिए, तो वो उसको अंदर बिठाता है और फिर ध्यान करने लगता है, और ध्यान करते करते फिर से अब कुछ हलचल होने लगती है। उसकी याद आने लगती है, तो वो उसके कहता है बाहर ठंड बहुत है, मैं भी अंदर आ जाऊं। तो वो स्त्री तो कुछ नहीं, ठीक है, और थोड़ी देर में वहां बैठ के वो ध्यान करता है तो मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। वो उसके पास जाता है, पूछता है आप कौन हो, कहां से आई हो, वगैरह वगैरह, और उसका हाथ पकड़ता है, कहता है आप स्वभाव से तो बहुत ही अच्छी हो। और समीप जाता है और तुरंत व्यास जी प्रकट होते हैं। वो कहते हैं बच्चू अब कहां गया तुम्हारा ब्रह्मचर्य? जहां जहां दमन है मुक्त नहीं हुई है आत्मा। आत्मा ने 63 जन्म भोगा है, साकार महावाक्य है, जितना काम से तुमने पाप किया है और किसी विकार से नहीं किया है। हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि शत्रु बहुत शक्तिशाली है और सीधा वार नहीं करता। जब ब्रह्मा सीधा आई थी विश्वामित्र के पास, सीधा शाप दे दिया था और वो शिला बन गई थी। जब उसने प्रणय निवेदन किया था कि मुझे आपसे विवाह करना है, इंद्र की तरफ से रंभा आई थी, विश्वामित्र ने सीधा उसको शाप दे दिया। परंतु इसलिए मेनका ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, वो सीधा लेके नहीं आई, वो सेवा करती रही उसकी चुपके से, और धीरे 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 मन में आकर्षण विश्वामित्र के उत्पन्न हुआ। काम जो है बहुरूपी है, माया जो है बहुरूपी है। जैसे तुम एक बार सीखते हो माया के आक्रमण से, माया भी सीखती है और अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है। जैसे दिखाया है ना, वो टोपी बेचने वाला होता है, वो जंगल में एक बार जाता है और पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए होते हैं, उसको नींद लग जाती है, बंदर सारे आते हैं और एक एक टोपी पहन लेते हैं। तो अब उसके पास वो सोचते अब मैं क्या करूं, तो वो अपनी टोपी निकालता है, सोचता है बंदर नकलची होते हैं, तो अपनी टोपी निकालता है जमीन पर पटकता है, तो सारे बंदर जो होते हैं वो अपनी अपनी टोपी निकालते और जमीन पर पटक देते हैं, और वो खुश होकर चला जाता है। ये मर जाता है, फिर उसका बेटा भी वैसा ही टोपी बेचने वाला बनता है इस व्यक्ति का, और वो भी उसी जंगल से एक बार जाता है और उसको भी थकान होती है, वो पेड़ के नीचे बैठता है और सो जाता है, और जब उठता है तो देखता है कि सारी टोपियां बंदरों ने पहनी है। उसको अपने बाप की वो आइडिया याद आती है, तो अपनी वो टोपी उठाता है और नीचे पटकता है, और एक बंदर आता है उस टोपी को लेके भी ऊपर भाग जाता है। वो भी तो अपने बाप दादा से सीखे है। माया महाठगनी हम जानी, कबीर ने कहा है, इतनी आसान नहीं है। एक बार जीत लिया, अब अगली बार नए रूप से आएगी, और जो नया रूप होगा वहां पर लिखा नहीं होगा मैं काम हूं, वो कोई कुमार होगा, कोई भाई होगा, कोई सेवाधारी होगा, कोई अनन्य होगा, कोई भी हो सकता है, और हमारी बुद्धि उसमें चली जाए, फिर वही अच्छा लगे, फिर वही चाहिए, फिर वही साकार मूल्यों में आता है। बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी मुरली चलाती है। बाप कहते हैं अरे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। दादी हमेशा सुनाती है कि एक भाई का दादी ने कोर्स किया, जानकी दादी ने, और ब्रह्मा बाबा के पास पहुंची और ब्रह्मा बाबा को कहा बाबा ये जो भाई है ना बहुत अच्छा है, जिसका मैंने कोर्स किया ना, ऐसा लगता है पूरा उसने एकदम बाबा का सिकिल अदा पुराना बच्चा है जो आ गया है, बिछड़ गया था, और उसने एकदम से ज्ञान को धारण कर लिया। बाबा मुझे लगता है उसको एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा तीर उसको लगा या तुमको? ये सबसे पहली धारणा है, इसको समझना, उसकी व्यर्थता को समझना, उससे क्या नुकसान होता है उसको समझना, किन किन आत्माओं का पतन हुआ और कैसी आत्माएं नीचे गिरी है, समझ कर उससे मुक्त होना है। जबरदस्ती नहीं, खाली मुरली में सुन लिया, काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें यह नहीं होना चाहिए। केवल इतना नहीं, ज्ञानमय प्रेममय समझ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। बाहर का खाना हमने कैसे छोड़ दिया? बाहर का खाते थे पहले, यहां तक कि गृहस्थी लोग भी बाहर का खाते थे, अचानक जिस दिन ज्ञान में आया एकदम ही छोड़ दिया। क्यों? अगर कुछ और होता तो नहीं छोड़ते। अंडरस्टैंडिंग आ गई, एकदम व्यर्थता दिखाई पड़ने लगी कि ये करने से ये होता है। और जितना जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही जबरदस्त, जितना तेजी से आत्ममुक्ति हो जाएगी, उसी तरह इस काम को भी समझ लेना है। कैसी कैसी इतिहास में आत्माएं गिरी है, अभिमन्यु से लेकर तो पृथ्वीराज चौहान तक, क्या क्या ये होता है, क्या हलचल होती है संसार में। जितने युद्ध हुए हैं आज तक 2500 साल में, कहते हैं 15,000 से भी अधिक युद्ध हुए हैं, मेन छोटे तो बहुत होंगे। इसका अर्थ बहुत ही कम समय होगा जहां पर युद्ध नहीं हुए, और वो भी जो समय था जब युद्ध नहीं होंगे, किसी ने कैलकुलेशन किया ऐसे 300-400 दिन थे, वो भी युद्ध की तैयारी के दिन थे। और कारण जमीन, स्त्री, काम, ये दो ही कारण रहे युद्ध के, समझना और मुक्त हो जाना। किसी और क्लास में हमने ब्रह्मचर्य की बहुत विस्तार से बातें कही है, यहां और बहुत सारी बातें हमको करनी है। फिर भी 8 मुख्य चीजें हैं यहां पर ब्रह्मचर्य की। इन 8 चीजों में से किसी भी एक का यदि एक चीज भी होती है तो वो ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। ब्रह्मचर्य अर्थात हम केवल काम की बात कर रहे हैं, विकार की, और बाकी चीजों की नहीं, देहभान की नहीं, केवल और केवल काम वासना की। 8 चीजों में से किसी भी एक चीज का यदि उल्लंघन होता है किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में, तो वो ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। पहला, दर्शन, देखना, कामुक दृष्टि से देखना। सन्यासी के लिए कहा जाता है यदि कोई स्त्री उसे दिख जाए, या स्त्रियों के लिए भी यदि कोई पुरुष उसे दिख जाए, एक बार देख लेना सहज है, दूसरी बार देखना मुड़कर इच्छा है, और तीसरी बार फिर देखना वासना। सन्यासियों के लिए तो संसार में भक्ति मार्ग में ऐसे भी नियम बनाए हैं कि कोई स्त्री भगवान के प्रेम में नीचे जमीन पर रो रही है, आंसू बह जा रहे हैं क्योंकि प्रभु से उसका मिलन नहीं हो रहा है, उसको भी सन्यासी न देखे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा, दोष न स्त्री का है न पुरुष का, दोष उम्र का है। बहुत प्रयत्न किया है संसार में भी सभी ने ब्रह्मचारी रहने का, यातनाएं दी है शरीर को ब्रह्मचारी रहने के लिए, ड्रग्स कंज्यूम किए, अफीम, ताकि इंद्रिय शीतल हो जाए, पर हो नहीं पाई। गिने चुने योगी रहे हैं संसार में जो ब्रह्मचारी थे, बाकी सब नहीं हो पाए। विदेश में भी सेंट फ्रांसिस और सेंट जॉन कुछ ही है ऐसे, बाकी सब गिरे नीचे कोई ना कोई कारण से। वो चर्चेस में, वो मोनेस्ट्री, वो मठों में, वो बुद्धिस्टिक सेंट, वो सारी भिक्षुनी। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब उन्होंने एंट्री कर रही थी स्त्रियों को, उन्होंने कहा था, मैंने सोचा था मेरा पंथ 5,000 साल तक चलेगा, अब केवल 500 वर्ष चलेगा बौद्ध धर्म। जब पहली बार उन्होंने उनको ये ताना दिया गया कि आप स्त्रियों के प्रति भेदभाव करते हो, उन्होंने स्त्रियों को सन्यासिनी बनने की आज्ञा दी, परंतु भविष्यवाणी कर दी थी अब मेरा धर्म केवल 500 वर्ष चलेगा, उतना ही चला। बाद में भारत से बाहर निकाल दिया गया, चीन में गया, तिब्बत में गया, जापान में गया, भारत में इतना नहीं रह पाया। ऐसा धर्मों के साथ हुआ है, क्योंकि वहां आते ही कुछ कुछ लगाव उत्पन्न होने लगे। योगी को संसार की स्त्री या योगिनी को संसार का पुरुष आकर्षित नहीं करता है, योगिनी को योगी आकर्षित करता है और योगी को योगिनी। संसार के लोगों में इतना आकर्षण नहीं होता है, इस ब्राह्मण परिवार के अंदर ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और ये आकर्षण बड़ा खतरनाक है। संसार के व्यक्ति तो शूद्र है, परंतु जो योगी है उसी से आकर्षण हो गया तो, उसी से प्यार हो गया तो वहां छूटना मुश्किल है। अब किसको ज्ञान सुनाएंगे? काम महाशत्रु है, स्वयं को वो अच्छा लगता है, क्या करे, वो बहन अच्छी लगती है, वो जब नहीं रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, इसको क्या कहेंगे? आत्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप क्या कहेंगे? यहीं से आत्मा पतन की ओर जाने लगती है। देखना, दूसरा स्पर्श, हाथ लगाना, इंद्रिय को स्पर्श जब करती है तो क्षणिक सुख होता है, पर यही क्षणिक सुख बाद में तुरंत फ्रस्ट्रेशन बनता है। तीसरा कीर्तनम, पहला दर्शनम, दूसरा स्पर्शम, तीसरा कीर्तनम, अर्थात उस व्यक्ति की स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, मन ही मन या मित्रों के सामने, ये बहन बहुत अच्छी है, ये बहन में ये भी गुण है, वो भाई बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अनन्य है, बहुत सेवा करता है, प्रभाव में आ गए और प्रभावित हो गए और झुकाव उत्पन्न हुआ है। फिर उसको यदि कोई कुछ कहता है तो इधर हलचल होती है, उसको कोई कुछ ना कहे, ये काम का ही अंश है। चौथा, संस्कृत में कहते हैं केली, अर्थात खेलना, अर्थात साथ साथ खेलना, स्त्री और पुरुष, ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। वो खेलना केवल उस समय तो स्थूल खेल था, अभी डिजिटल वर्ल्ड में व्हाट्सएप का खेल है, एक मैसेज इधर से दूसरा मैसेज उधर से, खेल रहे हैं, फोन पर खेलना चालू है, कभी वो नाराज कभी ये नाराज, घंटों जा रहे हैं, कितना पैसा, मोबाइल, टाइम और संकल्प, शरीर की शक्ति, क्योंकि उसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, संडे की मुरली, बात करना, सारी बातें उसको सुनाओ जो यहां सेंटर पर हो रही है। जितना व्यक्तियों को सुनाएंगे और व्यक्तियों से शेयर करेंगे, उससे शेयर करना स्वतः ही कम हो जाएगा। क्या कोई भाई कल्याण करेगा, चाहे कितना भी अनन्य हो? क्या वो बाप का रिप्लेसमेंट है? अगला, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, एकांत में बैठकर बातें करना। हमारी ओपीडी में जैन साध्वियां आती है, जो चेयर होती है पेशेंट की, अगर वहां पर कोई मेल बैठा है 45 मिनट्स के अंदर तो वो बैठती नहीं, खड़ी रहती है, उनको चिंता है अपनी पवित्रता की। पता नहीं कौन कहां बैठा था, कैसे वाइब्रेशन छोड़कर गया कोई पुरुष, खड़ी रहती है। एक बहन को एंजियोग्राफी बोला हुआ है, अभी तक नहीं कराई, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में नहीं जाएगी, जाएगी तो वो उनकी पैदल, और अभी 70 वर्ष की उम्र है, वो कहती है नहीं जाना है, छोड़ो, मेरे तप की शक्ति ही मुझे चला रहा है, और अभी तक है वो, और इतना अच्छा है सब कुछ, मौन रहता है लंबा लंबा 6-6 मास, जैन साध्विया कितनी धारणाओं में पक्की है, उनके अपने सिद्धांत हैं, पर उन सिद्धांतों में वो पक्के हैं, उनको टूटने नहीं देते। अगला, संकल्प, संकल्प करना समीप जाने का, स्त्री संकल्प कर रही है पुरुष के समीप जाने की फिजिकली, पुरुष संकल्प कर रहा है स्त्री के समीप जाने का, शारीरिक संबंध में आना, संडे की मुरली आंख का धोखा है। अच्छा लगता है कोई यहां हाथ रख दे तो, राहत मिलती है थोड़ी। कोई भाई हो तो और ज्यादा ही अच्छा लगता है कभी कभी। अगला अध्यवसाय, अध्यावसाय संस्कृत शब्द है, अर्थात वास्तव में समीप जाना। और आठवां वास्तविक काम क्रिया, ये आठ अनुच्छेद टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य, इन आठों में से कोई भी एक यदि ब्रेक होता है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात कामजीत संपूर्ण ब्रह्मचारी, ब्रह्म के जैसी चर्या, ब्रह्म की चर्या, ब्राह्मी स्थिति की चर्या। ब्रह्माचारी तो बहुत बड़ा विषय है, वो दूसरी बात है। ए, उसके बाद है आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, दूसरा कदम रिलेशनशिप। जितने हमारे संबंध हो, जिन जिन से हमारे संबंध हो, उसमें डिटैचमेंट हो, फैमिलियरिटी नहीं। बाबा ने कई बार कहा है फैमिलियरिटी का नशा भी कुछ कम नहीं। रिलेशनशिप्स चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, ब्राह्मण आत्माएं वो सारी जंजीरों तो छोड़ के आ गई, पर इसी अलौकिक परिवार में जंजीरों में फंस जाती है। हमने मधुबन में एक बार देखा, दो बहनें बैठी हुई है, भोजन कर रही है, वो उसको खिला रही है, वो उसको खिला रही है चम्मच से। प्रेम, आपसी प्रेम, अटैचमेंट केवल पुरुष पुरुष की ही नहीं, पुरुष स्त्री, स्त्री की भी होती है, किसी में भी हो सकती हो। आत्मा तो आत्मा है। आज कहा जाग सजनिया जाग, भगत साधु सब आत्माएं हैं। दो आत्माओं में अटैचमेंट, जो भी संबंध है दूसरों से हमारे, उसमें अटैचमेंट आते ही गिरावट आनी चालू हो जाती है। इसलिए संबंधों में थोड़ी सी डिटैचमेंट हो, कोई इतना हमारे समीप ना आ जाए कि हमारे जीवन की हर बात वो जान ले। अपने आप को एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनाकर रखना है, जो दूसरे समझ ना पाए पूरी तरह से अंदर क्या है। इतना खोल के नहीं रख देना है कि वो इतना शक्तिशाली और हिम्मतवान बन जाए कि हमारे जीवन में दखलंदाजी करने लगे। फिर कहते उसने ये किया, अरे किया पर अवसर तुमने ही तो दिया, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ करेगा वो, अवसर किसने दिया। डिटैच्ड, हम हमेशा कहानी सुनाते हैं, आपने शायद सुनी होगी, रविंद्रनाथ टैगोर उनकी लिखी हुई एक कविता, कविता तो नहीं किताब, सुशीर कविता बंगाली में लिखी हुई, द लास्ट पोएम। एक स्त्री है एक पुरुष है, स्त्री को पुरुष से प्यार है, पुरुष को स्त्री से प्यार है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं, दोनों ही शादी करना चाहते हैं। एक स्त्री जो है बहुत धनाढ्य अमीर है, पुरुष गरीब है, परंतु स्त्री कहती है मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी, हम शादी करेंगे परंतु साथ में नहीं रहेंगे। वो कहता है व्हाट, ये कैसी शादी है, हम शादी क्यों कर रहे हैं फिर, हम शादी करेंगे और साथ में नहीं रहेंगे। वो कहती हां शादी करूंगी तो मैं तुमसे ही करूंगी और ऐसी करूंगी, तुम्हारे लिए मैं एक महल बना के दूंगी, वो महल उधर होगा, बीच में झील होगी, कभी हम मिल लिए तो मिल लिए, आप उधर से आ रहे हो मैं इधर से आ रही हूं, तुम उधर से नौका विहार मैं इधर से नौका विहार, हाय हेलो, कभी अलग से एक साथ नहीं रहेंगे। पर वो कहता है आखिर क्यों। वो कहती है देखो यदि तुम्हें नहीं करना है तो तुम मत करो, परंतु मेरा केवल तुमसे प्यार है और तुम्हारी याद में मैं पूरा जीवन अविवाहित रहूंगी, पर प्यार केवल मुझे तुमसे है, तुम चाहो तो किसी और से शादी कर सकते हो। वो कहता है आखिर क्यों। वो कहती है जब भी दो व्यक्तित्व समीप आते हैं, वो जो उनके बीच में प्रेम है वो धीरे धीरे दैहिक हो जाता है और धीरे धीरे वो गिरावट आ जाती है, वो जो फ्रेशनेस इन द रोमांस वो नहीं रहती। स्पिरिचुअल फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, दो व्यक्ति एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानने लगते हैं तो घृणा भी उत्पन्न होती है। फिर इसके लिए जिसको हम सबसे अधिक मानते हैं, जिसको आइडियल समझते हैं, उससे तो सबसे दूर रहना चाहिए। यदि आपको कोई समझता है, बहन जी आप जैसा कोई भी नहीं है, इतना आइडियल आप में कितनी सारी धारणा है, समझ लेना ये सबसे बड़ा शत्रु है, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आप में फंस जाएगा। आप तो अपने आप को स्थिर कर लोगे, उसका क्या होगा, वो तो व्यक्ति में फंस रहा है ना। हम तो अपनी धारणाओं से ऊपर उठ जाएंगे, परंतु उसको हम फंसा रहे अपने अंदर। यदि हम उसके साथ हाँ में हाँ करते, हमें डोंट केयर का एटीट्यूड वहां धारण करना है। सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे, क्योंकि यदि हम निमित्त बने, हम नहीं फंस रहे, वो हम में फंस रहा है। और क्यों फंस रहा है? हमारी प्यूरिटी के कारण वो प्रभावित हो रहा है, धारणाओं के कारण प्रभावित हो रहा है, भाषण के कारण प्रभावित हो रहा है, जीवन के कारण। इतना श्रेष्ठ जीवन उसने कभी देखा ही नहीं था, और परंतु हमें उससे दूर इसलिए रहना है क्योंकि यदि मैं नीचे आ गई तो वो मुझ में फंस जाएगा। मैं तो अपने आप को ऊपर कर लूंगी, पर उसका क्या होगा, वो तो नीचे ही रहेगा ना, उसमें इतनी पावर नहीं है, अभी इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए चाहे घर में रह रहे, चाहे ऑफिस में, ऑफिस का तो सवाल नहीं, कहीं पर भी है, वो उधर हम इधर, बीच में झील, एक ही सेवा केंद्र में वो उधर मैं इधर, बीच में झील, बीच में मिल लिए, हेलो ओम शांति टाटा बाय बाय, यहां से दूसरे सेवा केंद्र में गए, सेवा की और आ गए, अब कोई लेना देना नहीं, 10 बार फोन करने की जरूरत नहीं, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, ये भी आ सकती है। सेवाएं कर ली, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, 1 महीने तक उसी की चर्चा चल रही है, 1 महीने तक उसके ही फोटो और वीडियो और शेयरिंग चालू है। मम्मा 3 मास तक बेंगलोर में थी, 3 मास में बहुत सारी सेवाएं करके मम्मा लौटी, मम्मा को पूछा गया, मम्मा आपने क्या क्या सेवाएं की, सेवा कैसी थी, मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप, कोई वर्णन नहीं। वो तो उस भाई ने बताया जो साथ में गया था क्या क्या सेवाएं हुई, मम्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका वर्णन करने में, ये हुआ वो हुआ, ये किया मैंने, याऊ त्याऊ, ये किया ऐसा किया वैसा किया, आर अर्थात डिटैचमेंट, बी आर ए, ए अर्थात अमृत वेला। सारे विश्व को हम सुना रहे हैं कि अमृत वेला शक्तिशाली करो, और हमारा अपना है क्या, अपने आप से यह प्रश्न पूछना है, कितना शक्तिशाली है, कितना अशरीरीपन का उसमें अनुभव, कितना परमात्मा प्रेम का उसमें अनुभव हो रहा है, कितनी बार आंखों से आंसू आ रहे, ऐसे आंसू जो डूब रहे उसके प्यार में। ऐसा यदि नहीं हो रहा, कितना हम उस परमधाम की अवस्था का अनुभव कर रहे, सूक्ष्म वतन में सर्व संबंधों का अनुभव कर रहे, कितना देह से अलग हो रहे हैं, और कितना शक्तिशाली स्थिति में सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं। यदि हमारा बस ऐसे ही जा रहा है तो हम क्या सिखाएंगे। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सुनाना भी बहुत अच्छा है, भाषण भी बहुत कर रहे, परंतु तपस्या और धारणाएं जहां नहीं, वहां उस भाषण भी अब प्रभाव नहीं डालेगा। टालियां बजेगी, लोग कहेंगे वाह वाह वाह, पर धारणा उनमें नहीं होगी। धारणा व्यक्ति तभी करेगा सामने वाला, जब वो धारणा मुझ में है। 8 बजे उठकर, 6 बजे उठकर जाकर अमृत वेले पर शक्तिशाली भाषण दिया जा सकता है, पावरफुल क्लास, भाषण कला है, धारणा की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। कोई 6 बजे उठे और 8 बजे जाकर अमृत वेला पर भाषण दे और लोग कहे वाह ऐसा भाषण हमने आज तक नहीं सुना, ये भी हो सकता है, परंतु गेट से बाहर जाते ही उड़ जाएगा वो। सामने वाला उतना ही धारण करेगा, चाहे तुम कैसा भी सुनाओ, जितना तुमने धारण किया है। हां उसका भाग्य यदि बहुत श्रेष्ठ है वो दूसरी बात है। अमृत वेला, बी आर ए एच, इसमें हम बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है पर टाइम कम है इसलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। बोलिए बहन जी। जी जी जी, अमृत वेला बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा। इस पर मधुबन में हमने एक पूरा सीरीज चलाया था लंबा, अमृत वेले की डिफिकल्टीज, अमृत वेले का समय, उसकी तैयारी क्या क्या हो, और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते, और एक चीज है अमृत वेले के बाद सो जाना, अमृत वेले के बाद का जो समय है श्रेष्ठ चिंतन का, मनन का, एक्सरसाइज का, वॉकिंग का, मुरली अध्ययन का, मुरली चर्चा का समय है, वो टाइम पे जैसे ही 4:45 बज गए और जाके सो गए की कमाई चट। और इसके भी हजारों कारण देते, अच्छे अच्छे कारण देते कि टाइम नहीं मिलता, फला फला फला, बहुत सारी चीजें। इतना था योग का अनुभव किया और जाकर सो गए। कईयों की आदत है, शारीरिक अस्वस्थता अलग चीज है, परंतु वो भी होता है। और कोई बहुत सारे अलग अलग देते हैं, हम रोज सुनते हैं, हमारे पास उधर इतने लोग आते हैं और अपने अलग अलग इतने बहाने देते हैं कि वो हम कहेंगे बहाने ही है, बहाने ही है वो। उसकी तैयारी रात से चालू करनी है अमृत वेले की। दूसरे दिन क्या अभ्यास करना है, क्या करते हुए सो रहे, व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, इसमें लगे हुए और सो रहे। जो सोते समय अंतिम संकल्प है, उठते समय वो प्रथम संकल्प होगा। उठते ही कोई कहता है नींद आती है, नींद का प्रकोप, जहां बैठो वहां नींद। शायद शारीरिक कोई बीमारी हो सकती है, कुछ विटामिन की कमी हो सकती है, शायद रेस्ट सारे दिन भर नहीं हो रहा है, शायद शक्तिशाली संकल्प नहीं है, व्यर्थ में दिवस जा रहा है सारा, व्यर्थ की बातों में। उसका प्रभाव माया बदला लेगी अमृत वेला, सुला के व्यर्थ संकल्प ला के साधारण स्थिति देके। कोई अनुभव नहीं, कई ऐसे है पता नहीं उनको तो लास्ट अमृत वेला कब किया वो भी याद नहीं है। हम बहनों की बात कर रहे हैं, बाकियों की स्टूडेंट्स की बातें नहीं चल रही यहां पर। हमारे पास रोज कम से कम 20 से 25 बहनें आती है एज अ पेशेंट, पर जिनकी समस्याएं शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा होती है। अमृत वेला तो छोड़, बाकी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। वो मुरली तो बस पढ़ के सुना देना है और काम पूरा करो, उसमें वो रस, उसका चिंतन, उसका मनन, वो पता नहीं कहां चला गया है, छूट गया है। हाँ, पहले जब हम आए थे बाबा के पास तब ये सब करते थे, अभी कुछ नहीं करते। कैसे हम दूसरों को सिखाएंगे ज्ञान योग? खुद ही धधकती हुई तपस्या अंदर नहीं है, खुद ही फंसे हुए है, बंधन में है, उस बांधेली माताओं से भी बदतर स्थिति यदि है, तो क्या पाठ पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, विश्व को, संसार को? तपस्या में जीवन जब तक हमारा तप नहीं रहा है, वो सारी सेवाएं सब व्यर्थ है। कितना भी करो उसमें संघर्ष होगा। तप चाहिए, तप। सारे बहाने एक तरफ, चाहे कितने भी रंगीन सुहावने, परंतु हमें तप करना है। जिसको करना है वो करेगा ही। जगदीश भाई उदाहरण देते हैं जस्टिस कृष्ण अय्यर का। इंद्रप्रस्थ में आए थे, जगदीश भाई के बाजू में उनका कमरा था। उनकी आदत थी 2 बजे उठने की। रात्रि में कल्चरल प्रोग्राम, जस्टिस अय्यर ने कहा था कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे कल्चर प्रोग्राम में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे किताबें लिखनी है। वो ऐसा व्यक्ति था, 100 साल जिया। अभी अभी 2014 में उन्होंने शरीर छोड़ा। 80 से ज्यादा लॉ पर किताबें लिखी। वो व्यक्ति जस्टिस अय्यर, जिसे कॉन्शियंस कीपर ऑफ इंडिया कहा जाता है, लॉ सबसे पावरफुल व्यक्ति कृष्ण अय्यर, उसकी आदत थी 2 बजे उठने की। वो कहता है मुझे तुम्हारे कल्चरर में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे सुबह उठकर अपनी किताबें लिखनी होती है 2:00। वो एक व्यक्ति संसार का इतना पक्का है अपनी धारणा में। और हम देखते हैं जब कल्चरल प्रोग्राम का नाम आता है पांडव भवन के सामने, वो बस इतनी भर जाती है, दूसरी बस भेजनी पड़ती है। जब योग का प्रोग्राम है कहीं पर, तब बसेस खाली रहती है। क्या हमारा योग, जब दादी आ रही है और दादी सामने बैठ के योग करा रही है, हॉल भरा पड़ा है, जब दादी नहीं है और डेली का है, कितना बाबा को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है मेरे बच्चे, अमृत वेला। कोई कोई है अंधेरे में बैठकर योग, क्या कर रहे हैं पता नहीं, नींद में ही कोई कोई आंखें बंद कर कर ये योग चालू है, क्या अनुभव हो रहा है, कुछ भी नहीं। बी आर ए एच, एच फॉर हिम्मत। अगला कदम है हिम्मत, ये हिम्मत का मार्ग है। यहां पे ऐसे फीलिंग देवी बनकर काम नहीं चलेगा। कोई मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं तो अच्छी हूं। कोई अगर किसी ने कह दिया कि तुम ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, एकदम फीलिंग आ गई, दुखी हो गए, उदास हो गए, चार दिन नाराज, अब मैं घर जाने की सोच रही हूं, हाँ फिर कोई मुझे मनाने आए, कोई मुझे कहे कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तब कहीं जाके हम मानेंगे। फीलिंग, सेंसिटिव नेचर, HSP सुबह भी कहा था, ये मार्ग तो धधकते हुए अग्नि पर चलने का मार्ग है। यहां पर कांटे चुभेंगे सुबह से लेकर रात तक 100, तो क्या हार जाए, तो क्या थक जाए, तो क्या पीछे मुड़ जाए कि ये इसने मुझे ऐसा कहा, क्या दूसरों के मुंह में पट्टी लगाई जा सकती है? और क्या ऐसा होगा कि कोई मुझे कुछ ना कहे, जब वो कहेंगे तो ही तो उन्नति होगी, और वो एक टॉर्च लेकर आ रहा है कहने वाला, तुम्हारे मन के अंधकार में एक पॉइंट है जिसका तुम्हें पता ही नहीं, वो अवगुण तुम में बसा है, जब उसने टॉर्च लेकर वो फोकस किया तब मुझे पता चला कि मुझ में भी ये अवगुण है, धन्यवाद उसका, निंदक निहारे राखिए। और हम चाहते कि कोई विरोध ना करे, कोई अपोज ना करे, कोई क्रिटिसाइज नहीं करे, कोई ब्लेम ना दे, जब वो ब्लेम करेंगे कि तुमने ये किया है, तब तो कहीं हमारा सत्य पर जो विश्वास है वो हम दिखा पाएंगे या हिल जाएंगे। मैं सब इतना अच्छी करती हूं, फिर भी सब लोग मुझे ही डांटते, सब लोग मेरे पर ही आरोप लगाते, सब लोग मुझे ही भला बुरा कहते, ये सब लोग ठीक नहीं है। इस ब्राह्मण परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार इन्वर्टेड कॉमा एक एग्जामिनेशन हॉल है, ब्रह्मा कुमारी के लिए एक एक ब्राह्मण एक एक पेपर है, बाहर वाले पेपर नहीं है। इस एक एक स्टूडेंट, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक अधर कुमार, एक एक मधुबन निवासी पेपर है, एक एक कन्या पेपर है, पेपर बनकर आएंगे सब और आ रहे हैं मुझे शक्तिशाली बनाने, क्लास आगे बढ़ेगी, अब मास्टर्स विघ्न विनाशक की डिग्री देने आ रहे हैं ये सारे, धन्यवाद इनका, ये नहीं आते तो हम कहां से शक्तिशाली बनते, इन्होंने झूठा आरोप लगाया तभी तो मेरे अंदर ये चेतना जागृत हुई, जब पवित्रता पर कलंक लगाए गए तभी तो मेरी पवित्रता की धारणा इतनी मजबूत हो गई। और किसी ने कह दिया इसका, उस भाई से कुछ चक्कर चल रहा है, और हमें बहुत हर्ट हुआ, सबसे ज्यादा हर्ट आत्मा को तब होता है, ब्राह्मण आत्मा को, जब पवित्रता पर कलंक लगाए जाते, बाकी किसी ने कह दिया तुमने चोरी की, वो किया, वो किया, फला किया, ढला, ये बहुत छोटी चीज है, परंतु यदि कोई पवित्रता पर उंगली उठाता है तो एकदम से आक्रोश आवेश होता है, लड़ने झगड़ने को लगते हैं, क्यों, क्या अपनी पवित्रता पर विश्वास नहीं, क्या सत्य पर विश्वास नहीं, क्या हमारा सत्य इतना कमजोर है कि दूसरा कुछ भी कहे, कहने दो, हमें पता है ना हम क्या है, फिर हम क्यों डरे, कहने वाला चाहे कोई भी हो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। हिम्मत करने वालों की, कहीं लिखा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर बार बार खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। गिराने दो शत्रुओं को, जितनी बार हम गिरेंगे फिर उठेंगे। गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। इसमें महानता नहीं है कि कभी भी ना गिरे, महानता है जब जब गिरो फिर से उठना। योग भ्रष्ट योगी का गायन है भक्ति मार्ग में। योग से भ्रष्ट हो गए, अब क्या करे, दुखी हो जाए, फिर से उठो। ब्रह्मचर्य से गिर गए, क्या करे, दुखी हो जाए, फिर से उठो, फिर से प्रतिज्ञा धारण करो। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा ये हो गया, नहीं होना चाहिए था, दृष्टिवृत्ति में हलचल आ गई, किसी भाई से अटैचमेंट हो गया और फिर पश्चाताप हो रहा है। स्टॉप, पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बहुत पश्चाताप कर लिया, अब आगे बढ़ो। एच हिम्मत को फिर धारण करो। अगला एम, एम अर्थात मुरली। मुरली अर्थात केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं, बहुत सारी चीजें हैं मुरली में। मधुबन में हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 108 विधियां बताई है। ये 52 है और एक दूसरा चार्ट है, 108 मुरली मंथन की विधियां। इसमें हम भाई बहनों के क्लास में इसका थोड़ा विस्तार करेंगे। हाँ, तो वो सुने हो गया आपने, वो हमें अप्लाई करना है। मुरली से पॉइंट्स निकालने, आप लोगों को हम कहेंगे आपका मुरली पढ़ना, स्टूडेंट्स का मुरली पढ़ना अलग होगा। आप जो मुरली पढ़ेंगे और आप जो पॉइंट्स निकालेंगे वो खाली टॉपिक्स निकालने हैं आपको। आपने मुरली पढ़ी, ये हाथ में मुरली है, आपको मुरली आज सुबह सुनानी है, 7 बजे 6 बजे जो भी टाइम है। आप इस मुरली से पूरे वाक्य लिखेंगे नहीं, आपको केवल टॉपिक्स लिखने हैं। ज्ञान योग बहन भाई है आज की मुरली में, कैसे? आपने खाली अपने डायरी में खाली 10 टॉपिक्स लिखेंगे, ओनली टॉपिक्स। आपको पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, विस्तार लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपने लिखा बहन भाई। अब इस पॉइंट पे आपको अपनी क्लास में विस्तार करना है। बहन भाई क्यों कहा, कितना अच्छा नई पॉइंट है, कितना नया उदाहरण बाबा ने दिया है आज की मुरली में। ऐसे मुरली से पॉइंट निकालने हैं, यथार्थ हैंडलिंग पावर। बस एक ही लाइन लिख दी और रख दी मुरली, अब पढ़ बहुत लिया, लिख बहुत लिया, अभी चिंतन करना बाकी रह गया है, टॉपिक्स ढूंढना है। बस मुरली से 5 टॉपिक्स निकाल लेना है सारे दिन भर, केवल टॉपिक्स। एक देख लिया, टॉपिक लिख लिया, ये टॉपिक अच्छा है, बस टॉपिक निकाल लिया। और मुरली सुनाते समय उन 5 टॉपिक्स पर रुक कर थोड़ा सा चिंतन सुनाना है। खाली ऐसे कोई मुरली सुनाते हैं जैसे मक्खी भी नहीं उठती है यहां से, पूरी मुरली हो गई पूरी, जैसे काम था एक, कर दिया काम पूरा हुआ। उसमें कुछ ऐसी पावरफुल चिंतन की बातें कि जो सामने वालों के हृदय को भेद जाए, और वो होगा तभी जब हमने उसका बहुत गहराई से मनन किया है। उस मुरली से कोई ड्रिल बना दो, कोई कमेंट्री कर दो, कुछ तो करो, परंतु वो समा जाए, केवल वो काम ना रहे जो निकालना है। बस मुरली सुना दी, काम हो गया, अब चलो। वो लोग भी उतना नहीं धारण, और उसमें से कुछ पावरफुल पॉइंट्स ऐसे हो जो हमको याद हो जाए, उसके लिए कई बार पढ़ने पड़ेंगे। सारा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ मुख्य। तो मुरली, मुरली अर्थात मुरली का चिंतन, मुरली का मनन, मुरली का अध्ययन। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में मराठी में कहीं लिखा है कि ये जो मुरली का मंथन है, इस मंथन को जैसे मैं घुंघरू बनाकर अपने पैर में पहना हूं, इसकी छनकार, इसकी झनक मुझे सुनाई देती है। मुरली इस ज्ञान के मंथन को, गीता के ज्ञान के मंथन को। एम, एम के बाद ए, अटैचमेंट फ्री। ब्रह्मा कुमारी अर्थात जिसका इस संसार में किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम आए बहुत अच्छा, तुमने कोर्स किया, नाउ बाय बाय, आओ मुरली में, बाकी तुमसे कोई पर्सनल हमको लेना देना नहीं है। आकर्षित होना है बाबा की तरफ, आकर्षित हो मेरी तरफ नहीं। जो अपने में फंसाती है वो ब्रह्मा कुमारी नहीं। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, श्रीमंत हो, कितना भी सहयोगी बनने वाला हो, बहुत अच्छा, पर बीच में तुम उधर हम इधर, बीच में झील। अटैचमेंट्स की भी हमने एक लिस्ट बनाई थी एक बार, 84 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स। छोटी छोटी चीजों में लगाओ, इतनी बारीक 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 चीजों में लगाओ, फंस जाती है उन लगाओ में के फॉर कीपिंग चार्ट। अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल चार्ट बनाना है, वो नहीं जो चार्ट इधर उधर से आता है, वो तो बना बनाया है, वो नहीं। अपना एक चार्ट अपनी दिनचर्या के अनुसार कि मुझे कहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये 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 मुझे अपना चार्ट बनाना है। हम ये नहीं कह रहे याद का चार्ट लिखो, कितना घंटा याद किया, 2 घंटा 3 घंटा 4, ये नहीं कह रहे। अपनी एक बेस्ट चीज है चार्ट से भी ज्यादा डायरी, एक डायरी लिखना रोज। जैसे आज की डायरी में लिखेंगे, आज सेंटर पर भट्टी हुई, उसमें हमने ये चार मुख्य नई पॉइंट्स हमने सीखी, फिर उसके बाद हम वहां गए, फिर उसके बाद हम यहां गए, फिर उसके बाद हम यहां आ गए, खाली हमने दिनचर्या लिखी। वो दिनचर्या लिखना भी, डायरी लिखना भी बहुत पावरफुल चीज है। उसमें आप खाली एक चीज कर दो, डायरी ऐसी लिखो ऊपर बाबा, जैसे बाबा को सब कुछ सुना रहा है सुबह से, आज अमृत वेला ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसका फोन, फिर ये महत्वपूर्ण इवेंट्स, वो आप फिर, और ये भी लिखो आज उसने ये कहा तो मुझे बहुत रोना आ गया, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया, परंतु फिर भी रूम पर आने के बाद आंसू तो आ ही गए। सारा ही लिख दो। यदि डर है कि कोई डायरी पढ़ ले तो एक्स वाई कोड लैंग्वेज यूज करो, किसी व्यक्ति का नाम नहीं डालो, एस वाई जेड कुछ भी डालो, परंतु लिखना है। लिखने से भी हल्का होता है व्यक्ति। और फिर चार हर संडे उसको पढ़ो एक हफ्ते, और संडे जब पढ़ोगे, ट्यूजडे को रोना आया था, कहेंगे इतनी छोटी सी बात थी और मैं और रो दी, इतनी छोटी बात में ये भी कोई बात है? चार दिन के बाद उसी घटना को जब हम देखते हैं तो बहुत छोटी लगती है, और उस दिन बहुत बड़ी लगती है। ऐसा लगता है बस अब क्या करूं और क्या नहीं, इमरजेंसी लगती है। कीपिंग चार्ट, यू उमंग उत्साह। उमंग उत्साह कम इसलिए हो रहा है क्योंकि नवीनता नहीं है। नवीनता लानी है, नवीनता, कुछ तो नया करके दिखाना है। वही 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 चीज नहीं। मुरली के पढ़ने में भी नवीनता, अमृत वेले में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, क्लास करने में नवीनता, क्लास कराने में नवीनता, सीखने में, सिखाने में नवीनता, भाई बहनों से डील करने में नवीनता, उसमें एक रूहानियत, उसमें एक कुछ और हो। जो अब तक नहीं किया है वो करो। अभी जो अव्यक्त वाणी चली, इंदौर ग्रुप से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा, 2/2/2008 की मुरली, अब तक जो किया है अब कुछ नया नवीन करके दिखाओ। पुराना बहुत कर लिया, अब कुछ नया करके दिखाओ। बाप दादा नवीनता चाहते। क्यों बाबा कहते? क्योंकि वो देख रहा है ये लोग वही कर रहे हैं, उसी ढर्रे पर, उसी वही ट्रेडिशंस, वही रिचुअल्स फॉलो करते जा रहे, कुछ भी नया नहीं कर रहे, वही योग वही ज्ञान। टाइम पूरा हो रहा है, 5-10 मिनट फिर पूरा करते हैं। हाँ 5 मिनट। तो कहाँ थे हम? यू के बाद एम अर्थात सदैव स्वयं को मधुबन निवासी ही समझना। मधुबन अर्थात बाबा का घर, मधुबन अर्थात ये जो सेवा केंद्र जहां मैं रहती हूं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहां पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ये जैसे पब्लिक है, स्टेज है, स्टेज पर हूं और ये मधुबन है। भगवान की सीधी नजर इस पर है। इस मधुबन में, इस सेवा केंद्र में, इस स्थान में, इस तीर्थ में कुछ भी ऐसी मेरी चलन ना हो जिससे बाबा का नाम खराब हो। अपने आप को निरंतर मधुबन निवासी समझना, सेवा केंद्र को भी मधुबन और अपनी बुद्धि से भी मधुबन की यात्रा रोज चार धाम की यात्रा करके आना। एम एम के बाद ए अर्थात अहंकार मुक्त, मैं कर रही हूं, मेरा सेवा केंद्र है, मेरे स्टूडेंट है, मैंने ये सेवाएं की, ये मैं कहां से आ गया। मुझ में ये गुण है, मेरी आइडियाज नहीं लेते तो चलो मैं तो चली, देख लो तुम जैसे करना है करो सेवा, नाराज हो जाते, ये मेरा प्लान है ऐसा करना चाहिए और उन्होंने ऐसा नहीं माना, तुम देख लो मैं तो चला, मुझे कोई लेना देना नहीं, पछताओ के बाद में देखना, मैं जो कह रहा हूं वही करना चाहिए। मोहम्मद रफी ने कहा है कि ये जो मेरी आवाज है ना, खुदा चाहता था किसी और को भी दे सकता था, मुझे दिया, ये जो आवाज है मेरी उसका धन्यवाद, महिमा मेरी नहीं है उस खुदा की है। जहां मैं बैठा हूं जिस सेवा केंद्र में, वो चाहता था किसी और को भी बिठा सकता था, और कि हमको लगता है हमसे योग्य लोगों की कमी है संसार में, हमसे पावरफुल और अच्छे अच्छे जिनमें गुण है, कला है, आर्ट है, सब वाले हमारे से अच्छे यहां है, पर ये तो मेरा भाग्य है कि उसने मुझे चुना। एक विदेशी बहन ने हमसे कहा था कि यदि बाबा तुमसे कहते कि मैं तुमको नहीं, तुम्हारा जो बाजू वाला था ना उसको एक्चुअली चुनना चाहता पर गलती से तुम चुने गए, तो तुम क्या करते? इट्स नॉट यू बट द अदर पर्सन। तुमको नहीं, तुम्हारी जो बहन थी ना छोटी, एक्चुअली उसको मैं ब्रह्मा कुमारी बनाना चाहता था पर गलती से तुम आ गई, ऐसा बाबा ने बोल दिया तो। तो अहंकार, सुदेश दीदी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि बाबा जो है टंकी है और मैं नल हूं, मेरी कहां महिमा, महिमा उसकी है जहां से कोई कहे टंकी कोई वो नल की कोई पूजा करना चालू कर दे तो महिमा नल नल से आ रहा है, पर चाहे तो किसी और नल से भी आ सकता है, ये तो नल का सौभाग्य है कि पानी ने चुना तुमसे आने का। कल कहा था ना तुम ज्ञान गंगा है, वो गंगा कभी कहीं पर जा नहीं सकती परंतु तुम ज्ञान गंगाएं प्रकट हो सकती हो जहां तुम चाहो वहां, कल की मुरली थी ना। मुझे चुना, धन्यवाद उसका। ये भी नहीं कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, ये भी एक डर रहता है, इनको कौन देखेगा, मैं ही हैंडल कर सकती हूं और कौन, तो किसी के बस की ये बात नहीं, मैं अगर ये सेवा केंद्र से चली गई दूसरे सेवा केंद्र तो यहां के स्टूडेंट का क्या होगा, यहां की सेवाओं का क्या होगा। अरे जो दूसरा आएगा ना वो तुमसे कई गुना अच्छा होगा, शायद तुम ही बाधा हो। ये भी हो सकता है। शायद तुम ही बाधा हो। तो ये भी नहीं, हमको याद है जब हम ग्लोबल हॉस्पिटल में ज्वाइन किए थे 8 साल पहले, तो हमारे पहले जो डॉक्टर थे डॉक्टर वाधवा, हमने देखा उनसे एक गुण सीखा, वो ज्ञान में तो नहीं थे परंतु एक गुण हमने सीखा उनसे। अब वो छोड़ के जा रहे और हमने ज्वाइन कर लिया था, कुछ एक मास हम दोनों साथ में थे और वो निकल रहे थे, तो एक तो ऐसा रहता कि वो इतने साल रहे, उनके सारे पेशेंट्स पहचान के, पूरा आबू के पेशेंट्स, उनमें फेथ, और एक तो वो हर एक को क्या कहते थे, ये मेरी जगह ये डॉक्टर आ रहे हैं। अरे लोग कहते थे उनको, डॉक्टर साहब आप नहीं जाओ प्लीज, वो कहते थे ये जो नए है ना ये मेरे से 2 गुना अच्छे है। ये हमने उनसे सीखा, देखो कैसे बोल रहा है, ये जो है ना जैसे मैंने तुमको ठीक किया ना, ये मेरे से 2 गुना अधिक अच्छे से तुमको ठीक करेंगे, ये मैं इनको जानता हूं, ये उसकी भाषा थी। तो संसार में हम हर एक से सीखे, बहुत महान है, सभी आत्माएं। एक जगह हम गए थे रहने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस में, तो वहां कोई बड़े भाई आ रहे थे और वो एक छोटी एक दूसरी बहन जी थी, बड़ी बहन को पता ही नहीं चला, और उन्होंने कहा आप ना एक दूसरा भाई है उनके घर में चले जाओ। और वो भाई बहुत दूर रहता था, मतलब वहां से हमको 5 किलोमीटर। तो हम वहां से निकल के आ गए, दूसरे दिन हमने कहा नहीं हम वो कॉन्फ्रेंस जाए हैं उसी के बाजू में किसी होटल में रह लेंगे। हमको थोड़ा दुख भी हुआ कि हम बाबा के घर में नहीं रह पाए, पर ठीक है हमने मान लिया। और ये बात जब बड़ी बहन को पता चली तो उन्होंने हमको सॉरी कहा, तो मतलब वो कह रही थी बाबा को हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे अब। तो मैंने कहा आप ऐसा सोचो ही नहीं। पर हमने उनसे ये बात सीखी कि इतनी पुराने और इतनी बड़ी बहन और हम जैसे छोटे से भाई को सॉरी कह रहे, कितनी महानता होगी उस आत्मा में, वो सॉरी कहने के लिए कितनी महानता चाहिए। मैं सोचता हूं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद न कह पाता। वो जिस भाव से और नम्रता से वो कह रही थी अब हम क्या करें, कितनी बार सॉरी करें। हमने कहा आप ऐसा, अब हम क्या बोले उनके सामने। हमको लगा, हमने कहा हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। वो कहती है हमको पता है हुई है। तो सीखना है। लास्ट कितना हो गया, आय। आर अर्थात रॉयल्टी। ब्रह्मा कुमारी अर्थात उतावलापन नहीं, ब्रह्मा कुमारी अर्थात कुछ कुछ बहने भाग भाग के जाती है कुछ कहीं कहीं मधुबन में। कितना कैसा लगता है, चल रहे है और मोबाइल पर बातें चल रही है, चल भी रहे और मोबाइल पे, मतलब वो जो दिव्यता, एक शालीनता, एक जो रहता है ना रॉयल्टी जिसको कहते हैं, वो नहीं नजर आती। अनिता बहन जी यहां बैठे हैं, हम उनको बहुत कम जानते हैं, पर जब हमने बहुत बार उनको स्टेज पर देखा, हमको उनकी एक बात, शालीनता और रॉयल्टी ने हमेशा आकर्षित किया है। वो चंचलता नहीं है, हलचल, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत स्थिर है, और बहुत सारी ऐसी है कि बस उछलती कूदना ही उनका स्वभाव है। यहां से वहां जाना है जल्दी हुई, इधर भागेंगी इधर भागेंगी, ये करेगी वो करेगी ये करेगी। या बात भी ऐसे जैसे मेल स्टाइल, जैसे पुरुष वो टाइप का है। नारी स्त्री या माता या फिर ब्रह्मा कुमारी, इसमें एक गुण होता है शील, शालीनता का, वो रहे जो कम बोले, जो रॉयल हो, उसमें बहुत अच्छा आकर एक दिव्यता नजर आती है वहां पर। और लास्ट है आय। आय अर्थात इंट्रोवर्शन अर्थात अंतर्मुखी, अंतर्मुखता, जितना हो सके अंदर अपने आप में स्वयं से बातें करो। कल मुरली में था, अपने आप से बातें करो। तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी जीवन की ये 12 कदम फिर से रिवाइज करते हैं और फिर क्लास को पूरा करते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा रिलेशनशिप में डिटैचमेंट, तीसरा अमृत वेला शक्तिशाली, चौथा हिम्मत, पांचवा मुरली मंथन, छठवा अटैचमेंट फ्री, सातवा चार्ट, कीपिंग चार्ट, आठवा उमंग उत्साह, नौवा मधुबन निवासी, दसवा अहंकार मुक्त, ग्यारहवा रॉयल्टी, और 12वां इंट्रोवर्शन। अच्छा, ओम शांति। यदि हमने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। ओम शांति। वो जब ना रिकॉर्डिंग होते रहता है तो हमको अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि वो पता नहीं कहां से कहां चला जाता है और उसको गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है उसका। वो हमारा जो भाव नहीं, लोग उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कभी कभी पकड़ लेते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है। इसके लिए वो बंद हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा पावर ज्यादा आ गई बोलने में। ओम शांति। अभी क्या प्रोग्राम,
अभिवादन, धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें आत्मा को झिंझोड़ने वाली थी। बहुत बार वो सब चिंतन जो शायद शुरू शुरू में बहुत बार पहले कभी किया होगा और फिर अब से करने की प्रेरणा फिर से आना, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। लाइक मुझे याद आ रहा था कि चार्ट लिखना शुरू से, जब से ज्ञान में चले, बहुत उमंग उत्साह से हमेशा चार्ट लिखना। फिर जैसे ही यहां बहुत सेवाएं बढ़ गई, कंपनीज में जाना, यहां वहां थक गए, शाम को नहीं लिखा, धीरे धीरे छूटता गया। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने बहुत बहुत अच्छी क्लास करवाई थी इसके बारे में, तो फिर से बहुत उमंग उत्साह से चार्ट लिखना शुरू किया, चिट्ठी की तरह जैसे वो कहते हैं। 2017 में जब जब ट्रेन में थी, 22 बार ट्रेन में थी, 17 बार चार्ट नहीं लिखा, जो नहीं लिखा वो याद रहा, बाकी डेली चार्ट लिखा। और 2018 में संकल्प किया मुझे आत्मा ने कि एक दिन भी चार्ट लिखना मिस नहीं होगा, चाहे ट्रेन में हूं चाहे कहीं भी हूं। तो ये चीजें एक बार संकल्प कर लें तो बाबा बहुत बल देता है, नहीं तो टीचर्स अक्सर इसमें ढीले हो जाते हैं कि हमें क्या जरूरत है चार्ट लिखने की, हम तो औरों को लिखवाते हैं। तो इसीलिए अगर हम इसमें और ज्यादा टाइट हो जाएंगे अपनी दिनचर्या में, तो हमें बहुत बहुत कुछ और अच्छा लगने लग जाएगा। लाइक चिट्ठी की तरह लिखते हैं तो सिर्फ बाबा ही नहीं, बहुत कुछ और अच्छा लिखा जाता है बाबा के लिए भी, बड़ा प्यार भरा। तो इसीलिए आज की सारे दिन की इतने अच्छे चिंतन को बढ़ाने वाली, अंदर तक झिंझोड़ने वाली ऐसी भट्टी के लिए, इन सब बातों के लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम सभी अमृत वेला करने जो नजदीक से आ सकते हैं तो वो सभी यहां आकर अमृत वेला करेंगे। क्लास के भाई बहन आएंगे तीनों दिन, अपने सब भाई बहनों को कह सकते हैं, कहें जरूर, इसमें हिम्मत आएगी उनमें कि 4 बजे नहा धोकर आ जाएं, 5 मिनट लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, तो नहा धोकर आ जाएं, क्योंकि वो इसलिए कि अपने यहां जल्दी क्लास होती है, 7 बजे के रिकॉर्ड पे भाई क्लास पूरी हो जाती है सचिन भाई जी, तो इसीलिए ऐसा होता है कि अमृत वेला सब घर में ही करते हैं। और कल की क्लास आदरणीय सचिन भाई जी की रहेगी, सेक्टर 44 में, सेंटर पर जगह कम है इसीलिए कम्युनिटी सेंटर लिया है, कम्युनिटी सेंटर का हॉल है, तो उसमें कोई कोई नजदीक वाले आना चाहें तो वेलकम है, आ सकते हैं। बाकी वहां की क्लास ही पूरी नहीं आती है इसीलिए कम्युनिटी सेंटर अलग से लेना पड़ा, उसका हॉल लेना पड़ा, बेशक 1 घंटे की ही क्लास रहेगी। और फिर 18 सुबह 6:45 से 6:30 मुरली, 6:30 से 7:45 बजे तक क्लास रहेगी सुबह सुबह, फिर उसके बाद सचिन भाई यहां आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे यहां आ जाएंगे, और उसके बाद 18 तारीख को सुबह की क्लास, संडे अव्यक्त मुरली वाले दिन, वो क्लास रहेगी यहीं सेक्टर 33 में ऊपर के हॉल में, मॉर्निंग क्लास में, जो आना चाहें आ सकते हैं। ऐसा है नेहा बेन, आ सकते हैं ना, जो नजदीक वाले आना चाहें आ सकते हैं। 19 तारीख को सुबह की क्लास सेक्टर 46 में, सामने छोटा सा ग्राउंड है तो उसमें रहेगी, तो उसमें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह बन जाएगी, तो जो भी नजदीक वाले आना चाहें आ सकते हैं। उसके बाद फिर यहां सबके लिए भट्टी होगी, वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी जो आधा दिन की छुट्टी लेकर आएंगे वो सब भट्टी का आनंद लेंगे 19 तारीख को, भाई बहन माताएं कन्याएं सब। बाकी सारा शेड्यूल सबको बताया गया है, व्हाट्सएप पर भेजा गया है और बाहर भी लिखा रहेगा, तो उसी अनुसार होगा। कल माताओं बहनों की भट्टी, माताओं कन्याओं की, नोटिस बोर्ड पर भी लगा हुआ है, और परसों भाइयों और कुमारों की भट्टी होगी। तो अभी सब बाबा के प्यार में मगन होकर दीदी से दृष्टि लेंगे, टोली लेंगे और सचिन भाई से वरदान लेंगे और प्रस्थान करेंगे। ओम शांति।